समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
हेलो देवेंद्र, गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल यू फोक्स ट्यून्ड इन टू हियर आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय एज वी बिगिन द प्रोग्राम विद सम न्यूज हेडलाइंस। देवेंद्र
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को जाएंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने का अवसर देगा। दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचार करेंगे। रूस के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में निजी भोज की मेजबानी करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी रूस में भारतीय समुदाय से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच परस्पर वार्ता के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने मीडिया को बताया कि भारत और रूस के बीच 2020 से ही विशिष्ट साझेदारी रही है, जो भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भी प्रभावी है। उन्होंने कहा कि ये वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच सहयोग को नई गति देगा। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया जाएंगे।
The Hemant Soren government will seek trust vote in Jharkhand Legislative Assembly today. A special session of the assembly has been convened today for the purpose. The session is scheduled to begin at 11. Chief Minister Hemant Soren has instructed all JMM MLAs to be present in the house. JMM's allies, Congress, RJD and CPIML, have also instructed their MLAs to be present in the house during the vote of trust. In the 81-member Jharkhand Assembly, 5 seats are vacant. Support of 39 MLAs is required to win the vote of confidence. Ruling Alliance has the support of 46 legislators, which include 27 from JMM, 17 from Congress and 1 each from RJD and CPIML. On the other hand, 27 MLAs are in the opposition, comprising 24 from BJP and 3 from AJSU. 3 MLAs are independent. Before taking oath, Chief Minister Hemant Soren had submitted a letter of support of 44 MLAs to Governor C.P. Radhakrishnan. Oath ceremony of ministers is likely to be held after winning the vote of confidence in the assembly. New faces are likely to be included in the cabinet.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर मणिपुर जा रहे हैं। श्री गांधी अपनी यात्रा के दौरान हाल की हिंसा से प्रभावित विभिन्न शिविरों में रहने वाले परिवारों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मिलने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
The National Testing Agency NTA has released answer keys for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2024. The window for students to challenge the answer keys is open till tomorrow. Release of answer keys sets the stage for the announcement of results. The results are expected to be announced within a week. The answer key provides candidates with an approximate idea of their scores and chances of admission to the 261 participating universities. For the first time, CUET UG was conducted in a hybrid mode. For 15 subjects, the tests were pen-paper based, while the other 48 subjects were computer-based. This year, over 13.4 lakh candidates registered for the Common Entrance Test for admission to undergraduate courses in 261 central, state, deemed and private universities.
फ्रांस में चुनावों के दूसरे और निर्णायक दौर का मतदान संपन्न हो गया है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने अब तक लगभग 60% अंतरिम मतदान की सूचना दी है, जो 4 दशकों में सबसे ज्यादा है। कई मीडिया हाउसों के शुरुआती एग्जिट पोल के नतीजों से पता चलता है कि वामपंथी गठबंधन एनएफपी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 172 से 192 सीटें, धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली को 132 से 152 सीटें और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मध्यमार्गी गठबंधन को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है। किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना नहीं जताई गई है। संसद के निचले सदन में कुल 577 सीटों में से 501 पर चुनाव हुआ है, बाकी 76 सीटें पिछले रविवार को हुए पहले दौर के मतदान में सुरक्षित हो चुकी हैं। मरीन ले पेन की धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली आरएन ने पिछले सप्ताह के पहले चरण में दबदबा बनाते हुए लगभग 1/3 वोट हासिल किए थे। वामपंथी और मध्यमार्गी पार्टियां तभी से आरएन को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोकने के प्रयास में एकजुट हो गई हैं। शुरुआती आधिकारिक नतीजे कल सुबह तक आने की उम्मीद है।
Getting to some sports news now. In badminton, Indian shuttlers bagged the men's and women's singles titles at the St. Denis Reunion Open 2024, a capital of French Overseas Department of Reunion in the Western Indian Ocean yesterday. In men's singles, India's Tharun Manapalli defeated Yudai Okimoto of Japan in straight sets 21-15, 21-15 to win his second title of the year. Earlier, he won the Kazakhstan International Challenge. While in women's singles, world number 75, India's Tasneem Mir clinched the title, defeating compatriot Rakshita Sri, also in straight games, 21-15, 21-19, in the final. However, in the men's doubles final, Indian duo of Prakash Raj and Gauss Sheikh lost to Julien Miao and William Villager of France, 9-21, 14-21, to settle for a runner-up finish.
महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम में कल खेला गया मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। बारिश से पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए, लेकिन पारी के ब्रेक के दौरान भारी बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण अंपायरों को दूसरी पारी में एक भी गेंद फेंके बिना मैच को रद्द घोषित करना पड़ा। इस परिणाम से दक्षिण अफ्रीका की 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हो गई है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच 9 जुलाई को चेन्नई में इसी मैदान पर खेला जाएगा।
And moving on to some steeplechase national record in athletics, India's Avinash Sable sets a new national record in 3,000-meter steeplechase at the Paris Diamond League in France last evening. The star steeplechase player bettered his own record by more than a second. Sable finished sixth at the event with a timing of 8 minutes and 9.91 seconds. The race was won by Abraham Saim of Ethiopia with a personal best 8.02.36, narrowly edging out Amos Seram of Kenya.
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड और आकाशवाणी के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कार्यक्रम में अब समय है महानगरों के समाचारों का, तो सुभद्रा से जानते हैं चेन्नई और बेंगलुरु तथा हैदराबाद से क्या खबरें हैं आपके पास।
यस देवेंद्र, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द आवरी कमिश्नरेट हैज इन्वाइटेड एप्लीकेशंस एंड रिलीज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ एन एरिया कमांडर एंड वन डिप्टी एरिया कमांडर ओनली फ्रॉम विमेन for home guards. Individuals engaged in social service can submit their applications at the Avadi Police Commissioner's office on or before July the 15th. Applications must include a resume, birth certificate, educational certificates, Aadhaar card, medical fitness certificate and a passport size photo. The applicant must be a resident of the Avadi Commissionerate limit, must have completed 18 years of age but below 50 years. Additionally, the applicant must be interested in public welfare, voluntary and social service. From high-speed internet to dedicated workstations, meeting rooms and fully equipped libraries, people looking for affordable co-working spaces can soon use the centres planned by the Chennai Metropolitan Development Authority. The agency has shortlisted CIT Nagar, Anna Nagar and Kolhatur for these centres combined with libraries. Co-working centres from different companies share space to save money by using common infrastructure. According to the State Minister for CMDA, P.K. Shekhar Babu, the co-working places planned by the government will be started at Rs. 30 crores. Moving on to Bengaluru, Karnataka Large and Medium Industries Minister M.B. Patil has informed that a second airport for Bengaluru is under consideration and the location will be finalized in a meeting to be held soon. Speaking to media persons in Bengaluru yesterday, the minister said that passenger load and connectivity to the existing Kempegowda International Airport will determine the location. He mentioned that Sarjapura and Kanakpura Road are strong contenders with passenger load in mind. On the other hand, places like Tumkuru and Dabas Spade can be considered due to their proximity to the existing international airport in Bengaluru. He informed that the restrictions not to build an airport within a 150-kilometer radius of the existing airport that will end in 2032. Since land acquisition and compensation to the landowners are a time-consuming exercise, the planning for the second airport has started now in advance. Reacting to the proposal of Tamil Nadu to build an airport bordering Karnataka in Hosur, the minister said that it has to be seen whether the exclusivity clause of the Kempegowda Airport applies to this proposal. Hyderabad News now. In Telangana, the month-long Ashadh Bonalu festivities began yesterday with gaiety and religious fervour. Celebrated during the Telugu month of Ashadam, this year's festivities will continue till the 4th of next month. The first bonam, cooked rice and jaggery in a decorated pot adorned with vermilion, turmeric and neem leaves, has been offered to goddess Jagdambika in temple at the historic Golconda Fort. State Endowments Minister Konda Sureka, along with few other ministers, presented silk cloths to the temple on behalf of the government for the first puja in Golconda. Hundreds of devotees took part in the procession along with ghatmas and traditional rituals and offered bonam to the goddess at the Golconda Fort. Union Minister of State for Home Bandi Sanjay Kumar took part in Bonalu festivities at Tigalagattu Palli in Karimnagar last evening and offered bonam to goddess Peddamma Talli. Meanwhile, Sikandrabad Ujjaini Mahan Kali Bonalu will be held on 21st and 22nd of this month, while Lal Darwaza Sima Vahini goddess Bonalu will be held on 28th and 29th of this month. More news from Hyderabad. Hundreds of devotees took part in the divine journey of Lord Jagannath on the chariots on the occasion of Rath Yatra yesterday. The International Society for Krishna Consciousness, ISKCON temples in the city, held the Rath Yatras with a grand procession at their respective temples. The grand chariot of Lord Jagannath, along with Balram and Subhadra, were taken out from several locations that include Secunderabad ISKCON temple NTR grounds and at the 130-year-old Sri Jagannath temple at Ram Gopal Pet amidst the chanting of Vedic hymns by the priests. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy inaugurated the Rath Yatra. And Devendra, over to you now for rest of the news.
Ji. दिल्ली की खबरें सबसे पहले केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों के कारण लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश दिया है। कल दिल्ली में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करके देश का कायाकल्प किया है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए श्री गोयल ने कहा कि देश के लोगों ने हाल के चुनावों में विपक्ष को नकार दिया है। इससे पहले दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोगों ने हाल के चुनाव में राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाई है, जो अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति लोगों की असंतुष्टि का परिचायक है। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी को लोकसभा चुनाव जिताने में अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली के लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रिश्वत मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच की मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार श्री सक्सेना ने इस मामले को गृह मंत्रालय को भेजने के सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव से सहमति जताई है। सत्येंद्र जैन पर दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने के 571 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 7 करोड़ रूपये रिश्वत लेने का आरोप है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दायर एक शिकायत के बाद टीएमसी नेता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत आरोप लगाया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुश्री मोइत्रा की टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि वे आपत्तिजनक थीं और एक महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन थीं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 5,000 शिक्षकों के तबादले के फैसले पर दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिधूड़ी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार श्री भिधूड़ी ने बताया कि शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि तबादले के इस फैसले के कारण शिक्षकों के लिए काफी चुनौतियां और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक अंतोन चेखव के नाटक द सीगल के हिंदी अनुवाद का प्रदर्शन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के परिसर में किया जा रहा है। नाट्य विद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्रों द्वारा प्रस्तुत यह नाटक 9 जुलाई तक शाम 6:30 बजे प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा। द सीगल नाटक के टिकट एनएसडी परिसर के रिसेप्शन पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। राजधानी में मौसम और पर्यावरण की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने पौधे लगाए और स्थानीय लोगों से बातचीत कर इस मुहिम के लिए जागरूकता बढ़ाई। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस साल राजधानी में अप्रत्याशित गर्मी से पैदा हुई समस्याओं को भविष्य में दोबारा होने से रोकना है। श्रीमती आतिशी ने आश्वासन दिया कि दिल्ली में हरियाली और बढ़ाने के लिए इस साल शहर में सरकार 65 लाख पौधे लगवा रही है। उन्होंने लोगों से वृक्षारोपण की इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने की अपील की। और मुंबई का रुख करें तो बृहन मुंबई नगर निगम अपर्याप्त वर्षा के कारण विशेष रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए पानी की कटौती बढ़ाने की योजना बना रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार शहर की 7 झीलों में 7 जुलाई के सप्ताहांत तक उपलब्ध पानी कुल क्षमता का मात्र 10.88% बचा है। अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में मुंबई को सालाना 14.47 लाख मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें दैनिक आपूर्ति आदर्श रूप से पूरी क्षमता पर 3,850 मिलियन लीटर होती है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कसारा और टिटवाला स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। मध्य रेलवे के अधिकारियों के अनुसार भारी बारिश और एक पेड़ गिरने के बाद पटरियों को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद स्थानीय ट्रेन सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि रविवार को सुबह के समय भारी बारिश के कारण अटगांव और थानसिट स्टेशनों के बीच पटरियों पर मिट्टी आ गई है। मुंबई सहित कई तटीय जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में माथेरन में 22 सेंटीमीटर के साथ भारत में सबसे अधिक बारिश हुई। रविवार को ठाणे जिले के शाहपुर, पालघर और पनवेल जैसे हिस्सों में भी बाढ़ देखी गई। उधर कोलकाता का रुख करें तो पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने के क्रम में केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त 15 कंपनियां तैनात की जाएंगी। राज्य में केंद्रीय बलों की कुल 70 कंपनियां तैनात की गई हैं। महानगरों की खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात। आज दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाने और गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री जा सकता है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और मायानगरी मुंबई में भी सुबह का तापमान 26 डिग्री रहा, दिल्ली जितना ही, और दिन में पारा 32 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहां पर भी बारिश की संभावना है और कोलकाता में घने बादल छाने, कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। तापमान 34 और 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। और सुभद्रा, शेष महानगरों में मौसम का हाल कैसा रहेगा?
या चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव रेन विद थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 28 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 36। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 21 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 29। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव क्लाउडी स्काई विद फ्यू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 23 डिग्री and a maximum of 39 degrees Celsius.
जी, और मौसम के बाद अब बात इतिहास की। आज सवेरे में ऐतिहासिक घटनाओं की बात करेंगे और इसमें 8 जुलाई के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र अपने श्रोताओं के लिए करेंगे। इस क्रम में 1858 में ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड केनिंग ने शांति की घोषणा की थी।
Yes, I'm going to take you back in time, Devendra. 987 AD, the city of Paris was found. Yes, friends, on July 8, 52 BCE, that's before the Common Era or before Christ, Julius Caesar conquered a small fishing village in Gaul, that's the modern-day France, called Lutetia Parisiorum, which over the centuries would become one of the most elegant and influential cities in the world, the capital of France. And 1800, the first successful vaccination performed in the US using cowpox serum to prevent smallpox that was given by Harvard's Dr. Benjamin Waterhouse. And friends, you know, it's interesting to know that the receiver of the serum was his own son, five-year-old Daniel in Massachusetts. In 1907, Elphinstone Picture Palace was started by Jamshedji F. Madan at Calcutta.
जी और 1948 में अमेरिकी वायुसेना में आज ही के दिन से महिलाओं की भर्ती शुरू हुई थी. इस प्रोग्राम का नाम था वुमेन इन द एयरफोर्स.
1954 दिस डे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट भाखरा नंगल डैम कैनाल एट पंजाब.
जी 1975 में म्यांमार के बगा में आए भूकंप में हजारों मंदिर ध्वस्त हो गए थे और भारी जान और माल का नुकसान हुआ था.
1991, L.K. Advani recognized as the leader of the opposition of BJP in the 10th Lok Sabha. And 1996, T.N. Session, Chief Election Commissioner, wins the Magsaysay Award.
जी, और इससे पहले 1994 में श्रीमाकी मुकाई जापान की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी.
1997, 33 people were killed and 67 injured as blasts ripped through parts of Ambala-bound train at Lehra Khana station in Bathinda district, Punjab. And 2011, Space Shuttle Atlantis is launched in the final mission of the U.S. Space Shuttle program.
और वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत क्रिकेटरों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था. और इतिहास के बाद अब याद करते हैं उन महान लोगों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है. इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बांग्ला साहित्यकार विष्णु डे को, जिनकी आज जयंती है. उनकी कविता संग्रह स्मृति सत्ता भविष्यत के लिए उन्हें सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. विष्णु डे आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद के युग में एक बंगाली कवि, लेखक और शिक्षाविद थे. एक प्रतीकवादी कवि के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी कविताओं में संगीत गुणवत्ता की मान्यता पाई और बुद्धदेव, बसु तथा समरसेन जैसे बंगाली कवियों की टैगोर पीढ़ी का हिस्सा बने, जिसने बंगाली साहित्य में नई कविता के आगमन को गहराई से प्रभावित किया. उनके अपने काम से एक कवि के एकांत संघर्ष, मानवीय गरिमा की खोज, उखड़ी पहचान के संकट की झलक मिलती है. अपने साहित्यिक जीवन के माध्यम से विष्णु डे ने कृष्णनगर कॉलेज में व्याख्याता 1934 से 1940 के बीच में सेवाएं दी व्याख्याता के रूप में और सुरेंद्रनाथ कॉलेज में 1940 से 44 के बीच में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में रीडर के तौर पर 1944 से 1947 के बीच में और मौलाना आजाद कॉलेज में प्रोफेसर जैसी विभिन्न क्षमताओं के साथ विभिन्न संस्थानों में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया. विष्णु डे की प्रमुख कृति स्मृति सत्ता भविष्यत ने बंगाली कविता में एक नई मिसाल कायम की. इसने उन्हें 1965 में जहां बंगाली साहित्य में अकादमी पुरस्कार के साथ साथ 1971 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाया.
Anniversary tributes to Vivien Leigh, British actress who achieved motion picture immortality by playing two of American literature's most celebrated Southern belle, Scarlett O'Hara and Blanche DuBois. And friends, listen to this. Music, when soft voices die, vibrates in the memory. Odors, when sweet violets sicken, live within the sense they quicken. Rose leaves, when the rose is dead, are heaped for the beloved's bed. And so thy thoughts, when thou art gone, love itself shall slumber on. Beautiful, nostalgic, thought-provoking and memorable, these lines came from the great romantic poet Percy Bysshe Shelley, or simply called P.B. Shelley. The year 1822, 8th of July, this day marks the death anniversary of Shelley, who was educated at Eton and at Oxford University, widely considered to be one of the finest lyrical poets of the English language. Some of his anthology pieces include Ozymandias, Ode to the West Wind, To a Skylark, and The Mask of Anarchy. Besides this, his catalogue also includes some visionary poems.
Ji. प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखक राजा राव की भी आज पुण्यतिथि है. 8 नवंबर 1908 को कर्नाटक के हसन में जन्मे राजा राव के सिर से महज 4 साल की कम उम्र में ही मां का आंचल छिन गया, जिसने उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। माता के अभाव और अनाथ होने का कारण उनका मन आवर्ती विश्व में नहीं लगता था। सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। एक राष्ट्रवादी होने के साथ साथ राजा राव एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। राष्ट्रवाद उनके कई उपन्यासों का प्रमुख विषय रहा। और भारत के जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम याद कर रहे हैं। चेतन आनंद 3 बार कॉमनवेल्थ मेडल जीत चुके हैं और 4 बार नेशनल चैंपियन बन चुके हैं। चेतन आनंद भारतीय बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। खेल में उनके योगदान के लिए साल 2006 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 जुलाई 1980 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जन्मे चेतन आनंद के पिता हर्षवर्धन ने उन्हें इस खेल के प्रति आकृष्ट कराया। चेतन आनंद को बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों में ही दिलचस्पी थी और वो दरअसल ऑलराउंडर क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है ना कि नियति हर किसी के रास्ते पहले से ही तय कर देती है। बैडमिंटन कोच भास्कर बाबू ने चेतन आनंद को 9 साल की उम्र में एक प्रतियोगिता में खेलते हुए जब देखा तो उन्होंने इनका कौशल पहचाना और इन्हें बैडमिंटन की कोचिंग देना शुरू किया। चेतन आनंद को करियर की सबसे बड़ी जीत 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मिली और उन्होंने कांस्य पदक पर अपना नाम लिखवाया। ज्वाला गुट्टा और साइना नेहवाल जैसे बड़े खिलाड़ियों की टीम को भी चेतन आनंद ने मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जितवाने में मदद की।
अमेरिकन कंट्री म्यूजिक सिंगर सॉन्ग राइटर रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एक्टर टोबी कीस वुड बी 63 टुडे फ्रेंड्स हैड ही बीन अराउंड। ट्रेजिकली ही लेफ्ट अस 4 months अगो टू बी प्रिसाइज दैट्स ऑन फेब 5, 2024। टोबी पास्ड अवे आफ्टर बैटलिंग गैस्ट्रिक कैंसर एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स हैज प्रोवाइडेड फैंस विद सॉन्ग्स टू फिट जस्ट अबाउट एवरी इमोशन लव हैप्पीनेस पेन लॉस एंड लॉट्स ऑफ पेट्रियोटिज्म। हियर इज वन ट्रैक वी आर गोइंग टू चेक आउट नाउ आई शुड हैव बीन अ कोबॉय वाज हिज डेब्यू हिट सिंगल लेट्स हियर इट नाउ।
I'll bet you never heard old Marshall Dillon say, Miss Kitty, have you ever thought of running away? Settling down, would you marry me? If I ask you twice and beg you pretty please, she'd have said yes in a New York minute. They never tied a knot. God wasn't in it. He just stole a kiss as he rode away. He never hung his hat up at Kitty's place. I should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride.
Birth anniversary of novelist, short story writer of Urdu language, Begum Masroor Jahan, who belonged to Lucknow. For her contributions to literature, she was awarded the Uttar Pradesh Urdu Academy Awards in 2010 and 2015 and the Hindustan Times Women's Award in 2017. And the South Indian film director, actor Revati celebrates her birthday today. She, of course, works in Tamil and Malayalam films, a trained Bharatnatyam dancer, having studied since the age of 7 and performed at Arangetram in Chennai in 1979.
जी, और सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जिन्हें हम जगदीप के नाम से जानते हैं, इन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया और अपनी हास्य कला से देश के तमाम दर्शकों को लगातार हंसाते रहे, गुदगुदाते रहे।
Happy birthday, singer-songwriter Joan Osborne, who earned quite a few Grammy nominations for her very first album, Relish. Yes, friend, Joan is an 8-time Grammy nominee, multi-platinum selling recording artist. And friend Saurav Ganguly celebrates his birthday today. Affectionately known as Dada, he is the 39th president of BCCI and former Indian national team captain. He is one of the most influential players in the history of Indian cricket, who received the Arjun Award in 1998.
हिंदी सिनेमा की सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों में शामिल नीतू सिंह का आज जन्मदिन है। उन्होंने 8 साल की उम्र में बेबी सोनिया नाम से अभिनय शुरू किया और 80 के दशक में नीतू सिंह ने कई सुपरहिट फिल्में दी। 1989 में अमिताभ बच्चन के साथ द ग्रेट गैम्बलर, 1978 में कस्मे वादे में रणधीर कपूर के साथ अपोजिट नजर आई, 1976 में आई सुपरहिट फिल्म कभी कभी में नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया।
तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बन जा रहा ले गया,
बंजारा ले गया ले गया, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां।
ऋषि कपूर से शादी के बाद लगभग 3 दशक का ब्रेक लिया था नीतू सिंह ने, और उसके बाद उन्होंने वापसी की और आजकल लव आजकल 2009 में आई थी, दो दूनी चार 2010 और बेशरम 2013, इन फिल्मों में भी उनके अभिनय को सराहा गया। 2022 में जुग जुग जियो में अनिल कपूर के अगेंस्ट नजर आई। और इसी जानकारी के साथ, इसी खूबसूरत गीत और संगीत के साथ, अब आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की मुझे देवेंद्र त्रिपाठी और सुभद्रा रामचंद्रन को दीजिए अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
नमस्कार।